नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथ राशि में भागवतम दशम स्कंद अध्याय संख्या 6, अध्याय का नाम है पूतनावध, श्लोक संख्या 9। ताम तीक्ष्ण चेत्तममति आमश्चेष्टिताम् विक्षांतराकोश परिच्छदासिवत्। वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्ष्यमाणे जननी याति तिष्ठताम्। ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम् विक्षांतराकोश परिच्छद आसवत्। वरस्त्रियं तत्प्रभया च घर्षिते निरीक्ष्यमाणे जननी ही अतिष्ठताम्। ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम् विक्षांतराकोश परिच्छदासिवत्। वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्ष्यमाणे जननी अतिष्ठिताम्। निरीक्ष्यमाणे जननी अतिष्ठिताम्। धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। ताम उस पूतना राक्षसी को तीक्ष्ण चित्ताम बच्चों का वध करने के लिए अत्यंत पाषाण हृदय वाली अतिवाम चेष्टिताम यद्यपि वह बच्चे के साथ माता से भी अधिक अच्छा बर्ताव करने का प्रयास कर रही थी। विक्ष्य अंतरा कमरे के भीतर उसे देखकर कोश परिच्छद असीवत मुलायम मयान के भीतर तेज तलवार की तरह वर स्त्रियम सुंदर स्त्री के तत्प्रभया उसके प्रभाव से च भी धर्षिते अभिभूत विह्वल निरीक्ष्यमाणे देख रही थी जननी दोनों माताएं ही निश्चय ही अतिष्ठाम, वे मौन रह गए। पूतना राक्षसी का हृदय कठोर एवं क्रूर था, किंतु ऊपर से वह अत्यंत स्नेहमयी माता सदृश लग रही थी। वह मुलायम मयान के भीतर तेज तलवार जैसी थी। यद्यपि यशोदा तथा रोहिणी ने उसे कमरे के भीतर देखा, किंतु उसके सौंदर्य से अभिभूत होने के कारण उन्होंने उसे रोका नहीं, अपितु वह मौन रह गई, क्योंकि वह बच्चे के साथ मातृवत व्यवहार कर रही थी। तात्पर्य, यद्यपि पूतना बाहरी स्त्री थी और साक्षात भयानक काल थी, क्योंकि उसके हृदय में बालक को मार डालने का संकल्प था, किंतु जब वह आई और उसने बालक को अपनी गोद में ले लिया, तो बालक की माताएं उसके सौंदर्य पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका भी नहीं। कभी कभी सुंदर स्त्री अत्यंत घातक होती है, क्योंकि लोग उसकी बाह्य सुंदरता पर मोहित होकर माया मोहित यह नहीं समझ पाते कि उसके मन में आखिर है क्या। जो लोग बहिरंगा शक्ति के सौंदर्य द्वारा मुग्ध हो जाते हैं, वे माया मोहित कहलाते हैं। मोहितम नाभि जानाति माम एभ्य परम अव्ययम, भगवद्गीता 7:13। नाते विदु स्वादगति ही विष्णु दुराशय ही बहिर्थ मानिना, श्रीमद भागवतम 7:5-31। यहाँ पर रोहिणी तथा यशोदा दोनों माताएं बाह्य शक्ति से मुग्ध अर्थात माया मोहित नहीं थी, अपितु भगवान की लीला के विकास हेतु योग माया द्वारा वे मुग्ध कर दी गई। योग माया का कार्य ही ऐसा माया मोह है। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं, सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा, आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है पूतना वध। कंस को मालूम चल गया है कि उनके मृत्यु के कारण उत्पन्न हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, और कंस अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके ये आदेश देते हैं कि ब्रज में जितने भी बच्चे उत्पन्न हुए हैं सबकी हत्या कर दी जाए। तो इसके लिए वो एंगेज करते हैं पूतना को। इससे पहले हम देखते हैं कंस ने सभी असुरों से मित्रता कर ली थी, उन पर विजय प्राप्त कर ली थी, और हर एक की योग्यता के अनुसार उनको एंगेज कर रहा था सेवा में। पूतना खेचरी थी, पूतना एक प्रकार की योगिनी थी, उसमें बहुत सी योगिक शक्तियां थी, हवा में उड़ सकती थी, और वो खेचरी थी। हवा में उड़ते हुए, आकाश में उड़ते हुए जितने भी ब्रज में संतानें उत्पन्न हुई सबको एक एक करके वध कर रही थी। बहुत ही पाषाण हृदय वाली, एकदम क्रूर, छोटे बच्चों को मार के खा जाना, डायन बड़ी पटु थी, इसमें एक्सपर्ट थी। और ऐसे ही करते करते वो नंद महाराज के आंगन में आ गई। और नंद महाराज उस समय मथुरा में थे, वसुदेव से मिल रहे थे और रास्ते में ही थे। वसुदेव ने उनको पहले से अगवा कर दिया था, कुछ खतरा है, आप जल्दी से जाइए। तो नंद महाराज रास्ते में थे, अभी पहुंचे नहीं थे। और जब पूतना आई, क्योंकि वो योगिनी थी, और नंद महाराज के आंगन में प्रवेश किया, तो अपने योगिक शक्तियों से बहुत सुंदर स्त्री बन गई। उसको कोई ब्यूटी पार्लर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि अपना फेशियल कराए, बालों को रंग करवाए, ऐसा कुछ नहीं। बस योगिक शक्ति, कुछ मंत्र का उच्चारण किया, एकदम सुंदर रूप में आ गई। तो आ गई सुंदर रूप में, इतने सुंदर रूप में आ गई कि उसको लोग पहचान ही नहीं पाए। कवि कर्णपूर्ण जी आनंद विद्वान चंपू में लिखते हैं कि पूतना इतनी सुंदर लग रही थी कि ब्रजवासियों ने जो स्वर्ग लोक की स्त्रियों की निंदा करनी शुरू कर दी। ये क्या उर्वशी क्या है इसके सामने, रंभा क्या है, छी कुछ भी नहीं है, इतनी सुंदर, साक्षात लक्ष्मी की तरह सुंदर, ऐसे लग रही थी जैसे अपने पति नारायण से मिलने आई हो, इतनी सुंदर। और क्या है, ताम तीक्ष्ण चित्ताम, उसका जो हृदय था बड़ा कठोर, तीक्ष्ण चित्ताम, बच्चों का वध करने के लिए अत्यंत पाषाण हृदय वाली। लेकिन लग कैसे रही थी, अति वाम चेष्टिताम, अति वाम, बहुत ही सुंदर, बच्चे के साथ माता से भी अधिक अच्छा बर्ताव करने का प्रयास कर रही थी, इतनी सुंदर और इतना ममता दिखा रही थी। उसने देखा ये छोटा बच्चा, इतना सुंदर बच्चा, किसी की गोद में नहीं है, ये कैसी माँ हो आप, आपका हृदय इतना कठोर कैसे हो सकता है, इतने सुंदर बच्चे को अपनी गोद से नीचे को रख सकता है, इतनी सुंदर वो बालक है। तो ऐसा वो दिखा रही थी। और क्या यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, विक्ष अंतरा कोश परिच्छद असीवत, तुलना दे रहे हैं कैसे, जैसे एक मुलायम सी म्यान में बहुत तीखी तलवार हो, वेलवेट का म्यान हो और उसके अंदर बहुत तीखी सी तलवार हो। तो बड़ी सुंदर से उसने रूप धारण कर, लेकिन अंदर हृदय बड़ा कठोर क्रूर। क्या था उसका संकल्प था, प्रभु लिख रहे हैं, पूरा डिटरमाइंड थी, पूरा संकल्प था कि इस बच्चे को मारना है। ऐसे गलत संकल्प के साथ आई थी, इतनी क्रूर थी, लेकिन ऊपर से बहुत ही मुलायम, बहुत ही सुंदर दिख रही थी। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो व्रज लीलाएं हैं, ये हमारे कई अनर्थों को इंगित करती है। तो पूतना हमारे जो अनर्थ है, एक फेक गुरु जिसे कहते हैं धोखेबाज गुरु, को इंगित करती है। अगर हमें व्रज भक्ति चाहिए तो हमारा सबसे पहला अनर्थ है कि हम किसी उल्टे सीधे गुरु के चक्कर में ना पड़ जाएं, तो उस अनर्थ से बाहर निकलना है। तो जिस प्रकार से इस संसार में बहुत से प्रभुपाद कहते हैं धोखेबाज देने वाले गुरु हैं, जो कि ऊपर से बड़े ही विद्वान लग सकते हैं, दिखने में बड़ी बड़ी दाढ़ी हो सकती है, बड़े मुस्कुरा के बोल रहे हों, बड़े मिस्टिक लग रहे हों, बड़े सुंदर सुंदर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हों, सुंदर कथा भी कर रहे हों, लेकिन अंदर क्या छिपा हुआ है, कृष्ण को मारने का, स्वयं कृष्ण बनने की इच्छा, मायावादी, मायावादी कृष्ण अपराधी, जो भगवान के बहुत बड़े अपराधी होते हैं। ऐसे मायावादियों का कहना होता है कि सब कुछ इस संसार में माया है, सब कुछ प्रकृति के तीन गुणों से बना है, और जब भगवान अवतरित भी होते हैं वो भी माया से बने हुए हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक प्रकार से वो नास्तिक हैं। और एक भाई हम जा रहे थे कहीं पे, एक टी शर्ट पर देखा, किसी लगाया था, आई वॉज एन एथीस्ट टिल आई केम टू नो आई एम गॉड, है ना, मैं तो एक नास्तिक था जब तक मुझे मालूम नहीं चला मैं भगवान हूँ। तो मायावादी आपको कन्विंस कर देंगे आप ही भगवान हैं, फिर ठीक है, फिर मैं आस्तिक हो जाता हूँ क्योंकि मैं खुद ही भगवान हूँ। तो वो वास्तव में कृष्ण को मार देते हैं, कृष्ण का हनन कर देते हैं। परम पूज्य जयप्रदा गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि जब वो अपने प्रारंभिक वर्षों में प्रभुपाद जी के साथ भारत में आए, तो उन सब प्रभुपाद की इच्छा थी कि सभी विदेशी भक्तों को जगन्नाथपुरी मंदिर में ले जाया जाए। तो उन्होंने जयप्रदा गोस्वामी महाराज को भेजा कि आप वहाँ के पांडवों के जो मुख्य से बात करके आइए। तो जयप्रदा गोस्वामी महाराज वहाँ बात करने गए, तो उन्होंने बोला आप, हम आपको आज्ञा दे देंगे अगर आप शंकराचार्य जी से आग्रह लेके आइए। तो शंकराचार्य जी के मठ में गए, तो वहाँ जाने लगे तो उन्होंने देखा उनके कमरे के बाहर बहुत सुंदर राधा कृष्ण के विग्रह हैं। तो बोले अरे ये कैसे राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तब उनको याद आया कि प्रभुपाद के साथ एक मॉर्निंग वॉक में थे, तो प्रभुपाद ने बताया था कि मायावादी लोग जब बिल्कुल शुष्क हो जाते हैं, इनके पास कुछ करने को तो है नहीं, ना कहने को कुछ है, सब कुछ माया है, तो जो कुछ कहेंगे वो भी माया है। क्या वर्णन करेंगे, क्योंकि ब्रह्म है वो निर्विचनीय है, उसका विचार भी नहीं किया जा सकता, वो सब कुछ कुछ क्या करेंगे। जब बिल्कुल बोर हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं, तो कथा भी करते हैं, विग्रह की पूजा भी करते हैं, हरि नाम भी लेते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और होता है। तो जब शंकराचार्य से मिले, उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, तो शंकराचार्य ने कहा नहीं, आपका बहुत अच्छा है, आप बहुत सेक्रीफाइस किया, लेकिन अच्छी बात है, आप जो कर रहे हैं अच्छा है, आपको भाग्य उदय होगा, अगले जन्म में आप हिंदुस्तान में जन्म लेंगे और फिर आप जगन्नाथपुरी मंदिर प्रवेश कर पाएंगे, तो अभी तो आप नहीं जा सकते। तो जाते जाते जयदेव स्वामी महाराज ने पूछ लिया, लेकिन आप तो अद्वैतवाद को फॉलो करते हैं, तो ये राधा कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? बोले राधा कृष्ण की पूजा कौन करते हैं, मैं तो अपनी पूजा कर रहा हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ, ये भी ब्रह्म है ना। तो ये ऐसे मतलब कि, और ये लोग हरिनाम भी ले सकते हैं, और हरिनाम करते हुए कीर्तन भी कर सकते हैं, नाचते भी हैं ना, जैसे कहते हैं ना चैतन्य पथ शंकर मत, चैतन्य महाप्रभु की तरह नाचेंगे कीर्तन करेंगे, लेकिन अंदर से मत क्या है शंकराचार्य का, कि मैं भगवान बनूंगा। श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं जब मायावादी लोग हरि नाम लेते हैं सबसे बड़ा अपराध है ये, और उसका वो बोलते हैं कि ये प्रतिबिंब नामाभास है। प्रतिबिंब नामाभास कैसे, जैसे एक नाम अपराध के बाद नामाभास की स्टेज आती है, नामाभास यानी कि हम अपराधों से धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। तो उसकी तुलना की गई है कि सुबह सुबह सूर्य अभी उदय हो रहा है, जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार छट जाता है, लेकिन ये जो मायावादी नाम लेते हैं इसको प्रतिबिंब कहा गया, प्रतिबिंब नामाभास, यानी कि सूर्य जो उदय हो रहा है उसका जब पानी में प्रतिबिंब देखेंगे तो जो पानी में प्रतिबिंब देखेंगे उससे ना तो हमें प्रकाश मिलेगा ना कोई रोशनी मिलेगी, लेकिन दिख रहा है वैसा, तो दिखने में वो हरि नाम है, लेकिन इच्छा क्या है, वो स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, उनको भगवान का प्रेम नहीं चाहिए। तो ये मायावादी गुरु होते हैं। कुछ ऐसी मायावादी संस्थाएं हैं, वो आपको बोलेंगे आप समाधि में जाइए और इतना ध्यान लगाइए कि ध्यान लगाते लगाते आप जिस अपने इष्ट का जो विग्रह बनाते हैं, वो अक्सर पंच उपासक होते हैं, गणेश जी की, दुर्गा जी की, सूर्य देव की, विष्णु की, इनकी पूजा करते हैं वो, और बोले जिसमें अभी तो आप प्रकृति के तीन गुणों में हैं, तो आप निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म में आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे, तो इस मूर्ति पे ध्यान लगाइए। और आप समाधि में कब जाएंगे? जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो आप अपने इस इष्ट पे ध्यान लगाइए, जब तक ध्यान लगाइए, और आपकी परिकाष्ठा क्या होगी ध्यान की, कि आपकी ध्यान की शक्ति से ये जो इष्ट की मूर्ति है ये फूट जाए, फट जाए एकदम, है ना। फिर आप समाधि में चले गए, आप ब्रह्म में लीन हो सकते हैं। आप देखिए कितना घातक विचार है ना। मुसलमान लोग आते थे हमारे मंदिर को तोड़ देते थे, मूर्तियों को तोड़ देते थे, चलो फिर भी वो दोबारा से बन के स्थापित हो जाती थी, लेकिन ये तो बिल्कुल श्रद्धा को तोड़ दिया एकदम, कि सामने जो मूर्ति है केवल मिट्टी की मूर्ति है, आपने ध्यान लगा के इसको तोड़ देना, फिर आप ब्रह्म में लीन हो सकते हैं, फिर आप समाधि तक पहुंच गए। तो ऐसे उल्टे सीधे गुरु हैं, इनसे बचना है। और कई बार हम प्रभुपाद जी की शरण में आने के बाद भी जो ये चीटर गुरु हैं इनके चक्कर में फंस सकते हैं, है ना। सहीजिया बोलेंगे आप इतने साल हो गए हरि नाम जप कर रहे हो, आपको कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। राधा रानी के दर्शन हुए? नहीं हुए। हम कराते हैं आपको, ऐसा मंत्र देते हैं आपको, सीधा हम मंजरी बना देंगे, है ना, आपको मंजरी साधना देंगे, आपको स्वरूप बता देंगे आपका। तो ऐसे कितने ही भक्त फंस जाते हैं। तो इन उल्टे सीधे गुरुओं से बचना, वास्तव में शिला प्रभुपाद कहते हैं कि कोई फेक गुरु होता नहीं है, फेक डिसाइपल होता है। गुरु तो गुरु ही है, वो कृष्ण का प्रतिनिधि है, वो फेक नहीं हो सकता। किसको फेक गुरु मिलते हैं? जो खुद फेक हो। चीटर और चीटेड, भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते थे ये पूरा समाज चीटर और चीटेड का है। चीटर देने वाले का भी उतना दोष है जितना चीटेड होने वाले का, क्योंकि धोखा कौन खाता है? जो सस्ती चीज चाहता है, जल्दी मिल जाए, है ना, जल्दी कृष्ण प्रेम मिल जाए, बाकी सब तो मूर्ख है, मैं जल्दी से ओवरटेक कर लूंगा, फटाफट पहुंच जाऊंगा। तो भगवत धाम जाने का जो रास्ता है इट्स वेरी नैरो एंड लॉन्ग, लंबा है और तंग है, इसमें कोई ओवरटेक नहीं कर सकता, ये अपने आप में एक शॉर्टकट है, इसमें और कोई शॉर्टकट मानने की आवश्यकता नहीं है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, उत्साह होना चाहिए, इसी जन्म में प्रेम चाहिए, लेकिन निश्चय रखना चाहिए कि यस, जो प्रभुपाद जी ने प्रोसेस दिया है वो परफेक्ट है, और उसके लिए धैर्य रखना चाहिए। तो ना हम निश्चय रखते ना धैर्य, और फिर हम पागल बन जाते हैं। यानी कि हम खुद सस्ते में माल चाहते हैं तो सस्ते वाले गुरु मिलते हैं। तो पोतना वध का जब हमें प्रसंग सुनते हैं, दिखने में इतनी सुंदर, लेकिन अंदर से पूरा हृदय में कठोर हृदय लेकर आई थी, संकल्प लेकर आई थी कि कृष्ण को मारना है। तो ऐसे गुरुओं से हमें बचना है। हम सबका अनुभव होगा, जब हम शुरू शुरू में प्रभुपाद जी की शरण में आए थे तो हमें ऐसे गुरु हो सकते हैं, हमें बोले हम तो कोई मायावादी गुरु मिला नहीं, हम अभी तक किसी सही जय गुरु के चक्र में नहीं आए, अच्छी बात है। लेकिन हमें निश्चित रूप से गुरु मिले होंगे हमारे संबंधियों के रूप में, मित्रों के रूप में। उनका होगा कहाँ जा रहे हो, ऐसी भक्ति थोड़ी होती है, हमने भी तो भक्ति की हुई है, पूरा पूरा दिन लगा देते हो, ये क्या दो दो घंटे बैठ के माला करते हो, ऐसा थोड़ी है, अति हर चीज की पूरी होती है ना, ये सब भी गुरु का काम करते हैं और इनके चक्र में हम फंस जाते हैं। तो पहला जो कदम है भक्ति में रूप गोस्वामी जी के अनुसार, आचार्य पद आश्रय, एक गुरु का आश्रय ग्रहण करना। तो इसलिए ये पहला ऑब्स्टेकल होता है कि झूठे गुरुओं के चंगुल से बाहर निकलना। तो पोतना वध की कहानी हमारे उस अनर्थ को बताती है कि हमारे अंदर कई बार टेंडेंसी होती है, हम भी सस्ता माल चाहते हैं तो सस्ते गुरु के चक्कर में फंस सकते हैं। तो इसलिए बाहर से दिखने में बहुत चीजें बहुत अट्रैक्टिव लग सकती हैं, लेकिन अंदर हमें देखना चाहिए उसका भाव क्या है। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि शीला प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में है, परफेक्टली बोनाफाइड, इसलिए इसमें पूर्ण रूप से श्रद्धा से हमें इसमें लगे रहना चाहिए। अब एक आम इंसान तो धोखा खा सकता है, लेकिन यहाँ पे यशोदा जी और रोहिणी की उपस्थिति में पूतना आई, और यशोदा और रोहिणी ने बड़े आसानी से पूतना को कृष्ण को गोद में उठाने की अनुमति भी दे दी, चुप रही बिल्कुल, है ना, निरीक्ष मारने जनन ही अतिष्ठिता, मौन रही। ऐसी कौन सी माता जी होगी जो किसी भी अनजान स्त्री को घर में आने देगी और अपने बच्चे को स्तनपान कराने देगी, है माता जी लोग, ऐसा संभव हो सकता है? कभी संभव ही नहीं है। और वो भी यशोदा जैसी माँ जो कृष्ण से इतना प्रेम करती है। यशोदा हमेशा कृष्ण के लिए चिंतित रहती थी कि कृष्ण कुछ खाया नहीं है, कमजोर हो गए हैं, वो कैसे ये संभव हुआ? तो ये श्लोक इसलिए आता है कि हमारे आचार्यगण बताते हैं कि परीक्षित महाराज के मन में यही प्रश्न था, ये कैसे संभव हो गया कि पोतना अंदर आई और कृष्ण को उठाकर स्तनपान कराने लगी चुपचाप, और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, कैसे संभव है? और वो भी कृष्ण को, यशोदा रोहिणी जैसे इतनी प्रेम करने वाली माताएं। एक बार कथा आती है, किसी गोकुल में भगवान शिव जी को मालूम चला कि कृष्ण प्रकट हो गए हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो ये सारी दिक्कत है, स्मार्टफोन हम ले लेते हैं लेकिन वो हमसे ज्यादा स्मार्ट हो जाता है, हमसे शांति नहीं होता। तो शिव जी ध्यान में थे तो उनको मालूम चला कि परम पुरुषोत्तम भगवान गोकुल में प्रकट हुए, तो उनकी इच्छा हुई मैं भगवान के दर्शन करके आता हूँ, है ना। तो पहले उन्होंने सोचा मैं ब्राह्मण के रूप में जाऊंगा, तो ब्राह्मण के वेश में आ ही रहे थे, तो तभी जैसे व्रज में प्रवेश किए उनके मन में विचार आया, नहीं भगवान को मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, अपना उल्टा सीधा रूप लेके क्यों, जैसा हूँ एज इट इज जाऊँगा। तो शिव जी अपने रूप में आ गए और द्वार पे खड़े होकर बोले भिक्षा दे हिम। तो यशोदा मैया अपने काम में इतने लग्न थी, बोला अच्छा अभी लाती हूँ कुछ भिक्षा लाती हूँ। बोले नहीं मुझे ये भिक्षा चाहिए कि मैं आपके लाला के दर्शन करना चाहता हूँ। तो यशोदा मैया ने देखा, अरे इतना भयंकर रूप, सांप बिच्छू लपेटे हुए और खोपड़ियों की माला डाली हुई, बोले कोई दर्शन वर्शन नहीं भैया, आप जाओ यहाँ से फटाफट, आपको कुछ देती हूँ, फल फूल चाहिए? नहीं नहीं फल वल नहीं चाहिए, मुझे आपके कान्हा के दर्शन करने हैं। बोले दर्शन तो बिल्कुल नहीं करने दूंगी, बोले मैं दर्शन तो करके ही जाऊंगा। बोले नहीं, वो आपके शरीर से कोई बिच्छू गिर गया, सांप गया, जल्दी जाओ, अभी मैं आपके लिए लाती हूँ कुछ आटा वाटा लाती हूँ, चावल लाती हूँ। नहीं, बोले मैं यहाँ पे अगर 10,000 वर्ष भी रुकना पड़े रुका रहूंगा, लेकिन दर्शन करके जाऊंगा। यशोदा जी ने बोला तुम 10,000 वर्ष क्या, 20,000 वर्ष भी बैठे रहोगे तो मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं ये द्वार बंद कर दूंगी और वो दूसरे द्वार से कृष्ण को बाहर ले जाऊंगी। तो शिव जी ने बोला ठीक है, अभी तुम मुझे दर्शन नहीं करने दे रही, थोड़ी देर में तुम आओगी और बोलोगे लोग दर्शन करो। तो शिव जी चले जाते, जैसे शिव जी जाते हैं कृष्ण तो अंतर्यामी है, देख रहे हैं दोनों के परम भक्त आपस में जूझ रहे हैं। तो कई बार कृष्ण भी इसमें आनंद लेते हैं, भक्तों को आपस में जुझा के।
लेकिन कृष्ण दिखाना चाहते थे कि कैसे वात्सल्य रस कितना महान है यशोदा मैया का। शिव जी को भी मना कर दिया, आपको दर्शन नहीं करने दूंगे। तो जैसे ही शिव जी गए, कृष्ण ने बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यशोदा ने उनको बहुत शांत कराने का प्रयास किया, वो शांति नहीं हो रहे। तो एक दूसरी गोपी आई, बोले क्या हो गया, क्यों नहीं शांत हो रहे। बोले लगता है तुम्हारे घर से कोई नाराज होकर गया। मैं कोई नाराज होकर नहीं गया। सोचो, बोले हाँ एक साधु आया था, वो नाराज होकर गया। बोले हाँ, उसको पकड़ के लाओ, जब तक वो शांत नहीं होगा, वो प्रसन्न नहीं होंगे, कृष्ण चुप नहीं होंगे। तो बोले आप पकड़ के लाओ उनको। तो देखा वो बैठे हुए थे, तो शिव जी को लाए और फिर कृष्ण को बाहर ले गए। कृष्ण को शिव जी ने गोद में उठाया और उनके चरणों को अपने सर पे लगाया और तब भगवान शांत हुए। तो यशोदा मैया इतना प्रेम करती थी, हर किसी को घर में अंदर में नहीं घुसने देती थी। और यहाँ तो पूतना आ गई अंदर और आई नहीं, बच्चे को उठा के स्तनपान कराने लगी और वो चुपचाप बैठी रही। तो ये कैसे संभव है? तो पूतना ऐसा नहीं कि व्रज में पहली बार ही ऐसा हुआ कि कोई वेश बदल के आया और व्रजवासियों को पता ही नहीं चला। और भी ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स आगे पढ़ेंगे हम, घटना लीलाएं पढ़ेंगे, कौन कौन सी लीलाएं ऐसे जिसमें कृष्ण को मारने के लिए असुर आए वेश बदल के, त्रलंबासुर, वत्सासुर, है ना, तो आए थे वत्सासुर, आए थे छोटे से वत्स बन के, कोई ग्वालवाल नहीं पहचान पाए। नहीं, कृष्ण पहचान गए ये असुर है और कृष्ण ने उसका वध भी किया। और प्रलंबासुर भी आए, जब प्रलंबासुर आए गोप बन के आए, उस दिन वो गोप आया नहीं था तो उसी गोप के विष में आ गए थे और कृष्ण उनसे बहुत मित्रता दिखा रहे थे। अरे प्रिय गोप आप आ गए, बहुत अच्छी बात है, आप मेरे ही साथ रहना। तो कृष्ण के ग्रुप में थे वो और सब सोचे थे तो कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। और जब बलराम जी को उठा के जा रहे थे और प्रलंबासुर ने अपना असली रूप दिखाया तो बलराम जी भी चकित हो गए। बलराम जी भी नहीं समझ पाए थे, जी गोस्वामी जी कहते हैं बलराम जी भी भ्रमित हो गए थे कुछ समय के लिए। तो वास्तव में देखते हैं व्रजवासी नहीं पहचान पाते, लेकिन कृष्ण पहचान जाते हैं। तो शिला भक्ति सिद्धांत सोरे ठाकुर महाराज एक बहुत सुंदर सिद्धांत देते हैं सीयर एंड सीन का, दृष्टा और दृश्य का। हम जब भगवान के पास आते हैं, सामने खड़े होते हैं, हम सोचते हैं कि हम दर्शन करने आए हैं। वास्तव में दर्शन हम नहीं कर रहे होते, भगवान हमारे दर्शन कर रहे होते हैं। हम मंदिर में आते हैं अपने दर्शन भगवान को देने के लिए, है ना। हम क्या दर्शन करेंगे इन चर्म की आंखों से, हमें तो मूर्ति दिखाई देंगे संगमरमर की, लेकिन भगवान हमारे दर्शन करते हैं, हमारे इस बाहरी देह का भी और देह के अंदर जो हमारे हृदय के भाव है उनके भी दर्शन करते हैं। तो पूतना आई तो भगवान तो समझ गए कौन आए, और आचार्यगण कहीं टीका देते हैं कि पूतना को देखते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, देख लिया था भगवान ने, आंखें बंद कर ली। उसे तीन चार कारण बताते हैं कि भगवान ने सोचा हो ये कितने बच्चों को मार के आई है, ऐसी इस व्यक्ति का मुझे दर्शन करना पड़ रहा है, क्या दर्शन करूं, चलो आंखें बंद कर ली। और दूसरा सोचा कि अरे अब ये पहले मुझे असुर का वध करना, वो एक स्त्री है, स्त्री का वध तो करना नहीं चाहिए, अब स्त्री का वध करना पड़ेगा, तो आंखें बंद कर ली भगवान ने। लेकिन भगवान ने देख लिया कि पूतना के भाव क्या थे, और आगे देखेंगे भगवान उनका जो स्तनपान करते हैं उनकी प्राणवायु को भी खींच लेते हैं। तो दृष्टा और दृश्य, जब हम भगवान के सामने आते हैं तो भगवान हमारे दर्शन करते हैं, हमारे हृदय के भावों को देखते हैं। इसलिए जब हम भगवान के सामने आए तो बड़े शुद्ध भाव से आने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे अंदर किसी भक्तों को लेकर दुर्भाव है या भगवान को लेकर दुर्भाव है तो भगवान तुरंत समझ जाएंगे। बाहर से हो सकता है हम बढ़िया सुंदर वैष्णव वेशभूषा में हो, लेकिन अंदर गलत भाव है तो भगवान पकड़ लेते हैं। अगर अंदर कुछ गलत भाव आ भी रहे हैं तो भगवान के सामने ईमानदारी से व्यक्त कर देना चाहिए कि ये द्वेष के भाव आ रहे हैं, कृपया मदद कीजिए मैं उससे ऊपर उठ सकूं। जितना हम आएंगे और ईमानदारी के साथ अपने हृदय को प्रकट करेंगे भगवान के सामने, वो वास्तव में दर्शन है और उससे हमारा भगवान से संबंध स्थापित होता है। तो ये बहुत सुंदर सिद्धांत है। शिला चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथपुरी में जाते थे तो गरुण स्तंभ के पीछे खड़े होकर दर्शन करते थे कि भगवान मुझे देख लें, गरुण जी को देखेंगे, गरुण भगवान के प्रिय भक्त हैं और मैं उनके पीछे खड़ा हूं तो मुझे मेरे भी दर्शन कर लेंगे। तो इस प्रकार से कृष्ण तो पहचान गए कि पूतना की क्या मंशा है, लेकिन रोहिणी और यशोदा नहीं पहचान पाई। क्यों? क्योंकि वो इतनी सुंदर लग रही थी और इतना प्रेम दिखा रही थी जैसे उसके हृदय में कृष्ण के लिए यशोदा और रोहिणी से भी ज्यादा प्रेम हो। एकदम शांत हो गई वो दोनों। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अक्सर सुंदर स्त्री को देखकर कोई भी मोहित हो सकता है, और लेकिन यशोदा जी और रोहिणी माया से मोहित नहीं थी। ये जो माया भी बता रहे हैं दो प्रकार की है, एक है महामाया, दूसरा है योग माया। तो महामाया और योग माया भगवान की बहिरंगा शक्ति और भगवान की अंतरंगा शक्ति। माया का अर्थ है जो हमें कृष्ण से दूर ले जाए। तो फिर योग माया क्या है? योग शब्द का अर्थ है कृष्ण से जोड़ना, माया का अर्थ है कृष्ण से दूर ले जाना। ये क्या मतलब हुआ, है ना? जैसे इंग्लिश में ऐसे शब्दों को बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन, है ना, कि किसी को बोला जाए इंटेलिजेंट फूल, है ना, कि बड़ा बुद्धिमान मूर्ख है, तो ये बात ही नहीं बनती कोई ऐसे। ये बड़ा बहादुर कायर, बड़ा बहादुर है लेकिन कायर है। तो ऐसी योग माया लगता है कि कृष्ण से जोड़ती भी है और अलग भी करती है। लेकिन माया का दूसरा अर्थ भी होता है शक्ति, यानी ऐसी शक्ति जो हमें कृष्ण से जोड़े वो योग माया, और ऐसी शक्ति जो हमें कृष्ण से दूर ले जाए वो है महामाया। तो ये अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति है। अगर कोई जीव कृष्ण को भूल कर भोगना चाहता है तो वो महामाया के अंदर आ जाता है, और कोई कृष्ण कृष्ण को जो कोई जीव कृष्ण की सेवा करने की इच्छा रखता है वो योग माया के अंदर आ जाता है। तो ये महामाया और योग माया। तो महामाया के अंदर जो जीव होते हैं, चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भगवत्ता के दो पहलू होते हैं, एक उनका ऐश्वर्य और एक उनका माधुर्य। जो महामाया के अंदर जीव है वो भगवान की भगवत्ता यानी कि उसके ऐश्वर्य को भी भूल जाते हैं और उसके माधुर्य को भी भूल जाते हैं। क्योंकि जब तक हम भगवान को भूलेंगे नहीं, इस संसार में हम एंजॉय नहीं कर सकते। आप किसी पड़ोसी के घर में जाके उसके डबल बेड में जाके सो नहीं सकते ऐसे। आपको मालूम है ये मेरा घर नहीं है, पड़ोसी का घर है। अगर कोई पागल व्यक्ति होगा जो भूल गया कि मेरा घर है कि पड़ोसी का घर है, वो कर सकता है ऐसा काम। इसलिए भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु मता सर्वं प्रवर्तते, इस पूरी जगत का कारण मैं हूं, मुझसे पूरा जगत उत्पन्न हुआ है। जब हम इस चीज को हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं पूरा जगत मेरे भोग के लिए बना है, यानी कि कृष्ण को भूल रहे हैं, तभी कोई भोग कर सकता है। अगर हमको मालूम है कि कण कण में भगवान है तो हम कैसे एक कण को भी भोग सकते हैं? भोग ही नहीं सकते। हर चीज भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो मां माया के चंगुल में आके जीव भूल जाता है कि कृष्ण भोगता है, तो बोलते मैं भोगता हूं, तो उसको भूलना पड़ेगा कि कृष्ण है। तो कृष्ण को भुलाती है महामाया, है ना, आपणात्मिक शक्ति प्रेक्षात्मक शक्ति, हमारे ज्ञान को ढक देती है और फिर हमें नीचे खींचती है। ये महामाया का प्रभाव है। योग माया में क्या होता है? योग माया में हम कृष्ण के ऐश्वर्य को भूल जाते हैं ताकि कृष्ण का माधुर्य और बढ़ जाए। तो वृंदावन में जो भक्त हैं वो जानते नहीं कि कृष्ण भगवान है, ये तुम्हारा लल्ला है, ये तुम्हारा सखा है, ये तुम्हारा प्रेमी है। तो भगवान के ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, भगवान का माधुर्य बढ़ता है। और योग माया ऐसी सुंदर शक्ति है कि कई बार भगवान भी ऐसा प्रतीत होता है इसके प्रभाव में आ गए। दामोदर लीला में हम देखते हैं कि भगवान यशोदा मैया को देखकर डर रहे हैं, वास्तव में डर रहे हैं, वो छड़ी दिखा रहे हैं तो रो रहे हैं। तो भगवान डरेंगे, भगवान रोएंगे क्या? लेकिन बीच बीच में भगवान अपनी भगवत्ता भी दिखा देते हैं। भगवान ने देखा जब यशोदा मैया ने बांध दिया तो भगवान ने मल कुबेर मणिगिरि का उद्धार भी कर दिया, खुद बधे हुए हैं। कुबेर आत्मा जो बदमते वैया मोचितो ये भक्ति कीर्तन भक्ति भाजम कीर्तन, खुद बधे हुए हैं लेकिन दो जीवों को मुक्त कर दिया, ये उनकी भगवत्ता है। तो योग माया एक डायरेक्टर है, आप समझ सकते हैं, और कृष्ण एक एक्टर है। तो जैसे डायरेक्टर कहते हैं कृष्ण वैसे कार्य करते हैं, लेकिन कृष्ण तो सुप्रीम है, योग माया भी कृष्ण के अंडर है। तो डायरेक्टर किसके अंडर काम करता है? स्क्रिप्ट राइटर। तो स्क्रिप्ट राइटर कौन है? कृष्ण। कृष्ण ही स्क्रिप्ट राइटर है, कृष्ण ही एक्टर है, और डायरेक्टर की सेवा किसको देते हैं? योग माया का। तो इस प्रकार से लीलाएं संपन्न होती हैं। तो यशोदा जी और रोहिणी योग माया के प्रभाव में आके उन्होंने पूतना को बोला ठीक है तुम कृष्ण को उठा लो, स्तनपान करा लो, तभी तो ये सुंदर लीला होती। वहीं पकड़ लेती, नहीं नहीं कहां से आगे तुम चलो, जितनी मर्जी सुंदर हो मेरे बच्चे को छूना मत, तो फिर क्या लीला होती? फिर इतना सुंदर लीला, भगवान अपनी भगवत्ता भी दिखा रहे हैं, उसका हम गुणगान भी कर रहे हैं। तो ये योग माया और महामाया है। तो जितना कोई जीव महामाया के प्रभाव में होगा उतना वो कृष्ण को भूला हुआ होगा, भ्रमित होगा, और जितना कोई जीव योग माया के प्रभाव में होगा वो उतना उन्नत होगा, वो कृष्ण के उतने समीप होगा। देखते हैं वृंदावन और द्वारका के भक्त हैं, द्वारका के भक्तों में ऐश्वर्य का भाव है, वो जानती हैं कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण के इतने समीप वो अंतरंग नहीं हो पाते। लेकिन वृंदावन में व्रज में योग माया का प्रभाव भक्तों पर ज्यादा है। और ललित माधव में रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि द्वारका में भी जो भगवान की दो मुख्य रानियां कौन सी हैं, सत्यभामा और रुक्मणी। अब जो राधा रानी है व्रज की, वो द्वारका में कौन बनती है, रुक्मणी की सत्यभामा, सत्यभामा बनती है। सत्यभामा का अर्थ है सत्य मतलब है स्वभाव, भामा का मतलब है क्रोध, जो क्रोध भी करती है भगवान पे। और जो चंद्रावली है वो क्या बनती है, वो रुक्मणी बनती है। एक वामपंथी है एक दक्षिणपंथी है, जिसको बोले जाता है तदित्य, एक को बोलते हैं तदित्यत्व और एक होता है मदित्यत्व। तदीयत्व होता है कि मैं आपका हूं, तदीयत्व हे कृष्ण मैं आपका हूं, ये बहुत श्रेष्ठ भाव है, आप जैसा मेरे साथ व्यवहार करें कर सकते हैं। तो रुक्मणी जी का ये भाव था, मैं आपकी हूं। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है मदीयत्व। मदीयत्व क्या है कि आप मेरे हैं, मैं जैसा चाहूं वैसा आपके साथ कर सकती हूं। तो यह है राधा रानी का भाव, यह है सत्य भामा का भाव, है ना। तो इनमें योग माया का प्रभाव ज्यादा है कि आप मेरे हैं और वो क्या है कि मैं आपकी हूं। तो इसमें जितना योग माया का प्रभाव जिसमें ज्यादा होगा, उसका कृष्ण के साथ उतना अंतरंग संबंध होगा, वो कृष्ण के उतने समीप होगा। तो अब हम जो जीव हैं, अभी हम किसके अंडर हैं महामाया भी और योग माया भी, दोनों के बीच में हमारा शिफ्ट होता रहता है ना। हम कृष्ण के साथ जैसे लंगड़ी डांग खेलते हैं ना कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे हम करते रहते हैं। नहीं, प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति है वास्तव में एक ही शक्ति है, और कृष्ण एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन की तरह है। उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग गर्म करने के लिए भी किया जा सकता है और ठंडे के लिए भी किया जा सकता है। तो कृष्ण अपनी कुशलता से अंतरंगा शक्ति को बहिरंगा बना सकते हैं, बहिरंगा को अंतरंगा बना सकते हैं। लेकिन जीव कैसे बहिरंगा को अंतरंगा बना सकता है, ये बहुत सुंदर प्रभुपाद इसमें वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें वे अपने इच्छानुसार बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं, इसलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगा शक्ति जो इसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है, भगवान की इच्छा से बद जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शमित होती है। थोड़ा हिंदी में थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि जीव के लिए जो एक्सटर्नल एनर्जी है बहिरंगा शक्ति है वो अंतरंगा बन जाती है, बहिरंगा शक्ति का प्रभाव कम हो जाता है। निर्भर करता है कि जीव दो चीजें करे, पश्चाताप और तपस्या, रिपेंटेंस एंड पेनेंस। जितनी प्रपोर्शन में जीव पश्चाताप और तपस्या करेगा उतने प्रपोर्शन में बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति में बदल जाएगी, है ना। तो जीव स्वतंत्र है, उसको बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में रहना कि अंतरंगा शक्ति के, और इसका मास्टर स्विच किसके पास है, कृष्ण के पास है ना। 15:15 क्या है, सर्वस्य चाहामृद्धि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान मपोहनम च। कृष्ण ही हृदय में बैठे हमें स्मरण कराएंगे तो योग माया, या विस्मरण कराएंगे तो महामाया। नहीं, वो कौन सा स्विच दबाएंगे ये निर्भर करता है जीव की इच्छा पे। हम कृष्ण को बोलेंगे चलो एक रेड बटन है एक ब्लू बटन है ना, रेड बटन है कृष्ण का स्मरण, ब्लू बटन है कृष्ण का विस्मरण। रेड बटन दबाइए तो कृष्ण रेड बटन दबा देंगे, हम भूलना चाहते हैं तो ब्लू बटन दबा देंगे, कंट्रोल कृष्ण के पास है। और इस बहिरंगा शक्ति से अंतरंगा शक्ति में हम कैसे अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, रिपेंटेंस एंड पेनेंस, पश्चाताप और तपस्या। क्या पश्चाताप, जब हम एक प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आते हैं और उनसे संबंध ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो जो एक भक्त होगा जो शास्त्रों को सही ढंग से पढ़ेगा सुनेगा उस पर मनन करेगा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा, अगर भक्ति को गंभीरता से लेगा तो निश्चित रूप से उसके हृदय में पश्चाताप होगा, क्यों मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया, कैसे मैंने भगवान के साथ दुर्व्यवहार किया, भक्तों के साथ दुर्व्यवहार किया, अब इतना समय कम रह गया मुझे, अब अपना पूरी शक्ति पूरा जीवन भगवान की सेवा में, उसको पश्चाताप का भाव उजागर होगा। और यही पश्चाताप की अग्नि से उसका हृदय शुद्ध होगा और भगवान की कृपा को आकर्षित करेगा। यही पश्चाताप उसको तीव्र गति से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और फिर पश्चाताप के बाद तपस्या, तपस्या नो मोर नॉनसेंस, अब फिर अच्छे ढंग से सख्ती से चार नियमों का पालन। और वास्तव में देखा जाए यही दीक्षा की विधि है। दीक्षा की विधि से हम बहिरंगा शक्ति से अंतरंगा शक्ति में जा सकते हैं। अगर हम गुरु के दिए हुए दो वचनों को बड़ी सख्ती से पालन करें, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप, प्रेम पूर्वक जप, और जब 16 माला का जप करते हैं हम ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक, तो जो कृष्ण का विस्मरण है वो दूर होता है और वो पश्चाताप है। सबसे बड़ा पश्चाताप प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस है, अपनी सुसभ चेतना को जागृत करना। अभी हमारे हर कार्य के केंद्र में मैं हूं, सेंटर मैं हूं, इसका हमें पश्चाताप होना चाहिए। मैं अपने आप को कृष्ण से कॉम्पीट कर रहा हूं, कृष्ण से स्पृधा कर रहा हूं। वास्तव में ये मानने की बात नहीं है, हर वस्तु के केंद्र में कृष्ण ही है, सब कारणों के कारण कृष्ण ही है। वो तो मैं महामाया के चुंगल में आके भोला हुआ हूं कि कृष्ण सब कारणों के कारण है, तो मैं सोचता हूं सबको मैं घुमा रहा हूं। प्रकृति के लिए मारा नाम गुणे कर्माणी सर्वेशा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूं, हम इतने मानते हैं, मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। लेकिन जब हम गुरु की सही ढंग से शरण लेते हैं और शास्त्रों का सही ढंग से श्रवण और अध्ययन करके उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो कोई भी सिंसियर निष्ठावान जीव होगा उसके हृदय में पश्चाताप उदित होना चाहिए। और ये अक्सर हम देखते हैं कनिष्ठ भक्त के हृदय में ये पश्चाताप उत्पन्न नहीं होता। कनिष्ठ भक्त तो कई बार बहुत मिस करता है, क्या इंद्रतृप्ति करता था मैं, वाह, मार्केट से गुजरता था यहाँ यार, यहाँ खाने जाते थे डोसा, क्या बात थी यार, अब तो यार चार नियमों का पालन करना पड़ रहा है ना, यहाँ यहाँ जाते थे पीवीआर में ना? उसको पश्चाताप होता है मैं क्यों भक्ति कर रहा हूँ, ये मैंने क्यों दीक्षा ले ली, 16 माला में क्यों चक्कर में फंस गया यार, उसको इस चीज का पश्चाताप होता है। या होगा भी फिर वो मिस करता है इंद्र तृप्ति को, वो भक्ति से इतना उसको रहनी है। लेकिन अगर भक्ति हम उन्नति कर रहे हैं तो मध्यम अधिकारी के स्तर पर हैं, तो उसको निश्चित रूप से पश्चाताप होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब अभी हम सही, हमारी प्रगति नहीं हो रही है, अभी हमने शास्त्रों को सही ढंग से अध्ययन नहीं किया, संबंध ज्ञान अभी स्पष्ट नहीं हुआ। और जितने मात्रा में पश्चाताप होगा उतना हम योग माया के प्रभाव में आएंगे, उतना हमारा जीवन आनंदमय होगा। महामाया मतलब माया ताप, त्रिताप से हमें पीड़ित किया जाता रहेगा। क्लेशाग्नि भक्ति का जो गुण है, क्लेशाग्नि और शुभदा प्रकट नहीं होंगे, क्लेश ही क्लेश लगे रहेंगे। लेकिन जैसे हम निष्ठा के स्तर पे आएंगे, मध्यम अधिकार के स्तर पे आएंगे, हमारे में पश्चाताप होना चाहिए, कितनी बड़ी मैंने गलतियां की, कैसा दुर्व्यवहार किया, कितने भोग की इच्छाएं रखी, क्या क्या मैंने योजना बनाता था भोग के लिए, अब नहीं करूंगा, कृपया करके मुझे अपनी शरण दीजिए। इस पश्चाताप की भावना से हम जप करेंगे। और ये भी बताया कि नाम अपराध से नामाभास भी व्यक्ति तब प्रोग्रेस करेगा जब उसको पश्चाताप होगा, फिर वो बहुत गहराई से जप करेगा। और साथ में तपस्या, अब कोई नॉनसेंस नहीं, चार नियमों का सख्ती से पालन। तो जब ये हम करेंगे तो फिर बहिरंगा शक्ति का प्रभाव कम होता जाएगा और अंतरंगा शक्ति का प्रभाव बढ़ता जाएगा, और यही वास्तव में साधना है और यही दीक्षा का प्रयोजन है। तो आज के श्लोक में हमने चर्चा की कि कैसे जो पूतना थी बहुत सुंदर बन के आई, लेकिन अंदर उसका भाव बहुत तीक्ष्ण था, कृष्ण को वध करने का था। तो इसकी तुलना की गई है एक झूठे गुरु से, है ना, जो बाहर से दिखने में हो सकता है बहुत सुंदर सुंदर बातें कर रहे हो, कृष्ण कथा कर रहे हो, लेकिन अंदर से उनका भाव कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण की सेवा करना नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण बनना, या फिर सही जी आप राधा कृष्ण के संबंधों को बहुत सस्ता लेना, तो ये झूठे गुरुओं से हमें बचना, ये हमारा जीवन व्रज भक्ति पाने का पहला अनर्थ है कि झूठे गुरुओं से बच के सही गुरु की शरण में आना। या फिर भक्ति करते करते हमारे अंदर ये भाव जागृत हो सकता है कि हमारे गुरु जी ठीक नहीं है ना, शिष्य को अपनी चिंता कम होती है, गुरु की चिंता ज्यादा होती है ना, कि मैं तो ठीक ही हूं, शायद गुरु जी ठीक नहीं है, तो किसी दूसरे गुरु के पास जाया जाए, कोई नया मंत्र लिया जाए, बोर हो गए इस मंत्र से। तो ये जो अनर्थ है, ये पूतना वध की कथा सुनने से अनर्थ दूर होगा। और दूसरा कि रोहिणी और यशोदा जी ने पूतना को क्यों नहीं रोका, वो महामाया के प्रभाव में नहीं थे, वो योग माया के प्रभाव में थे। और हम कैसे महामाया से योग माया के प्रभाव में आ सकते हैं, पश्चाताप और तपस्या करके। आज हम कृष्ण के सामने आए तो अपने हृदय के भावों को शुद्ध करें, और भगवान हमारे दर्शन करते हैं, भगवान हमारे हृदय के भावों को भी पहचान जाते हैं, तो भगवान के सामने जितना हम ईमानदार रहेंगे उतना भगवान हमें उतनी ज्यादा हम पे कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी है? यस प्रभु जी।
जो दर्शन करने की जो विधि है जो श्रीमद् भागवतम में भी आती है या अलग अलग अन्य शास्त्रों में भी आती है, हाँ। तो उनका कितना महत्वपूर्ण स्थान है एक भक्त के जीवन में?
वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है आपका। निश्चित रूप से जो दर्शन करने की विधि है वो मेरे हृदय को शुद्ध करने के लिए है, है ना। तो वो मेरी एक वो सेवा है, एक भक्ति का वो अंग है। तो मैं सेवा कर रहा हूँ भगवान के दर्शन करके हृदय को शुद्ध कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रहा अभी भगवान को, एज इट इज नहीं देख पा रहा। तो भगवान के चरणों को देख रहा हूँ, भगवान के उसको देख कर मैं अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जो भगवान है वो मेरा साक्षात दर्शन कर रहे हैं कि ये आया जीव इस समय आया है क्या, इसके हृदय के भाव में सब कुछ समझ पा रहे हैं। तो वो एक योग की विधि बताई है भगवान कपिल देव जी ने कि कैसे हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं।
इस भाव में ऐसे सुन के लग रहा है कि इसमें भी मैं अगर अपने बारे में सोचूंगा, एटलीस्ट कुछ टाइम था जो मैं भगवान को देख रहा था तो उस थॉट्स में रहता था, बट इसमें भी अगर मैं ये सोचूंगा मैं अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए आया हूँ, इसी तरह एनालाइज करने लग जाऊंगा तो पर्पस डिफीट नहीं कर देगा?
पर्पस डिफीट नहीं है। उसमें कहा जाता है, एक राधानाथ महाराज ने बहुत अच्छे लक्षण बोला था, टू सी इज टू सर्व एंड टू सर्व इज टू सी। हम देख रहे हैं तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान इसलिए हमारे सामने प्रकट हुए हैं, बहुत कृपावश प्रकट हुए हैं। तो हम आ रहे हैं तो एक सेवा है भगवान की, यहाँ आना भगवान के सामने खड़ा होना एक सेवा है। तो हम भगवान को प्रसन्नता के लिए खड़े आ रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए आ रहे हैं। और अर्च विग्रह की ये प्रकृति है कि वो हमेशा सब पे कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सो व्हेन यू कम इन फ्रंट ऑफ द डीटीज इट्स ए काइंड ऑफ अ सर्विस टू द डीटीज। तो हम इस ढंग से कई बार आते हैं कि आते हैं हम नो एक तरह से भोग, आहा आज बढ़िया लग रहे हैं भगवान, ये है वो है, यू नो एक नए भक्त का भाव है। लेकिन असली भाव ये है कि मैं सेवा के भाव से आया हूँ, भगवान की सेवा के लिए, अर्च वगैरह की सेवा के लिए आया हूँ दर्शन करने। और भगवान वास्तव में हमारे देखते हैं और साथ में फिर हमें अपने हृदय को रिवील करने जो हमारे हृदय के अंदर भाव है, ताकि एज इट इज भगवान हम जो देख रहे हैं मैं उसको प्रकट कर रहा हूँ। दैट वे क्लियर। और कुछ बोलिए? यस माता जी। नहीं, शरीर कष्ट में है वो तो बात है, शरीर कष्ट देगा ही। तो हमने ये नहीं तपस्या करने की ठंडे पानी में खड़े हो जाएं या एक टांग पे खड़े होने हैं, चार नियमों का पालन कर। प्रभुपाद जी ने इतना आसान बना दिया है, एकादशी का व्रत रखना और चार नियमों का पालन करना बस, लेकिन इसको सही ढंग से करें, है ना।
प्रभु जी आपने बोला पश्चाताप करना चाहिए जिनसे जो हमारे जीवन में सांसारिक सुख और मोह माया है, तो एक आप ये बताइए मुझे कि विद्यार्थी के जीवन में हमें किन चीजों और किन तरह की मोह माया को छोड़ना पड़ेगा ताकि हमें फ्यूचर में उसका पश्चाताप ना हो और हम अपने विद्या के मार्ग पर चलते रहें और भी लगे रहें।
वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या नाम है आपका?
कर्मण्य।
वाह कर्मण्यवाधिकारस्थ है। नहीं, बहुत अच्छा आपका प्रश्न भी है और आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि विद्यार्थी को ऐसे क्या कार्य करने चाहिए कि बाद में जाकर उसको पश्चाताप ना करना पड़े। तो सबसे पहले स्मार्टफोन से सही उपयोग करें उसका, ज़्यादा उपयोग ना करें उसका, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है। कितने स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन का एडिक्शन है, उसके कारण उनका इतना टाइम चला जाता है और फिर बाद में वो बहुत पछताते हैं, है ना, टाइम वेस्ट हो गया। आप भी देखते होंगे ना। और एक अच्छे संग में रहें, बिकॉज जब अच्छे संग में रहेंगे तो हम अच्छी आदतें सीखेंगे और अच्छी आदतों से क्या होगा, हम अपने टाइम को अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। बुरे संग से हमारी बुरी आदतें आती हैं, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो विद्यार्थी के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना, सही समय पे वो सही एनर्जी सही स्थान पे लगा सके। तो अच्छा संग बहुत जरूरी है। और आपका अच्छा कंसंट्रेशन बना रहे और अच्छे संग में आप सीखेंगे कि आपको भगवान के नाम का जप जरूर करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप अच्छे ढंग से जप करेंगे, आपकी कंसंट्रेशन भी अच्छी होगी, आप स्मार्टफोन जैसी चीज़ों का कम से कम उपयोग करेंगे, जितना आवश्यक है उतना करेंगे, तो क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, आप कम समय में ज़्यादा पढ़ पाएंगे, ज़्यादा याद कर पाएंगे, फिर आपको पछताना नहीं पड़ेगा। यस माता जी।
ऋषि, भगवान को शरणागत होने से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। वो उत्तम लेवल, वो भगवान किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो भगवान को सरेंडर करने के लिए सोचता है कि भगवान पे निर्भर रहे, या फिर भगवान को सरेंडर करेंगे तो जस्ट एक सेंटिमेंटल माना जाएगा, या वो भी रियल सरेंडर हो सकता है, या फिर केवल एक उत्तम भक्त का ही सरेंडर रियल?
नहीं नहीं नहीं, शरणागत तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, राइट फ्रॉम द डे वन हम शरणागति कर रहे हैं। जैसे हमने हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू किया, ये शरणागति है। हमने प्रसाद ग्रहण करना स्वीकार किया, ये शरणागति है। तो भगवान इतने वो नहीं है, क्रूर नहीं है कि जब तक उस लेवल पर नहीं आओगे आपकी बात मानूंगा ही नहीं मैं। किसी भी लेवल पर हैं हम, भगवान से कुछ भी प्रकट करते हैं भगवान बहुत एक्नॉलेज करते हैं, बहुत ग्रेटफुल रहते हैं छोटी छोटी सेवा के लिए भी। सो कोई भी नया भी भक्त आएगा, वो भगवान के लिए एक फूल भी लेके आएगा, वो शरणागति का लक्षण है। तो भगवान उसको स्वीकार भी करते हैं, भगवान तो बहुत तैयार बैठे हमारे एक एक भाव को, एक एक वस्तु को स्वीकार करने के लिए। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। Thank you.